हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवी गणों का सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद्भागवतम के सत्र में। श्रीमद्भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय के 45वें श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। आप हमारे पीछे बोलिए। यज्ञाय धर्मपतये विधिनै पुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम्। हास्यन् मृगत् त्वमपि यः समुदाजहार हरे कृष्ण। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यज्ञाय, समस्त यज्ञों का फल भोगने वाले श्री भगवान को, धर्मपतये धार्मिक विधानों के स्वामी को, विधि निपुणाय उसे जो निपुणता से विधि विधान पालन करने के लिए भक्तों को ज्ञान प्रदान करता है, योगाय साक्षात योग को, सांख्य शिरसे सांख्य दर्शन का उपदेश देने वाले, प्रकृतीश्वराय ब्रह्मांड के परम नियंता को, नारायणाय असंख्य जीवात्माओं के आश्रय, नर जीवात्माएं तथा अयन आश्रय शरण को, हरे हरि स्वरूप श्री भगवान को नमः, सादर नमस्कार। इति इस प्रकार उदारम उच्च स्वर से हास्यन हंसते हुए, मृगत्वम अपि मृग की देह धारण किए रहने पर भी, यह जो समुदाज हार जप करता रहा। इसका अनुवाद, मृग देह धारण करने पर भी बोलिए, महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म रक्षक योगस्वरूप सर्व ज्ञान स्रोत संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा हैं, वे सुंदर तथा आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके यह देह त्याग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूँगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य सुने, सारे वेद कर्म ज्ञान तथा योग को सकाम कर्म मनोधर्मी ज्ञान तथा योग भली भांति समझने के लिए हैं। हम आत्मानुभूति के चाहे जिस स्वरूप को स्वीकार करें, हमारा परम लक्ष्य तो श्री भगवान रहते हैं जो नारायण हैं। सभी जीवात्माएं भक्ति के द्वारा उनसे नित्य जुड़ी हुई हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय नारायण का स्मरण ही जीवन की सिद्धि है। यद्यपि महाराज भरत को मृग देह स्वीकार करनी पड़ी, किंतु वे मृत्यु के समय नारायण का स्मरण कर सके। फलस्वरूप उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पूर्ण भक्त के रूप में हुआ। इससे भगवद गीता 6:41 से कथन सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, जो आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे आ जाता है वह ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है की पुष्टि होती है। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ था किंतु असावधान रहने के कारण उन्हें मृग रूप में जन्म लेना पड़ा, किंतु मृग देह धारण करने पर वे अत्यंत सचेष्ट रहे जिससे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे आजीवन कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण भक्ति के संदेश का पहला उपदेश महाराज रघुगण से प्रारंभ किया। इस प्रसंग में योगाय शब्द अत्यंत सार्थक है जिसकी श्रील मध्वाचार्य ने बताया है। अष्टांग योग का प्रयोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना है, इसका लक्ष्य भौतिक सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस अध्याय का लगभग समापन होने वाला है, इसके बाद बस एक श्लोक और रह गया है और फिर आगे प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन शुरुआत हो जाएगा। इस श्लोक में जैसे जड़ भरत महाराज अपने पूर्व जन्म के बारे में, जब उनके पास जब वो मृग देह में थे और किस प्रकार से उन्होंने अपना मृग देह छोड़ते समय श्री भगवान से प्रार्थना की है, उसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में और श्लोक के अनुवाद में बताया है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत और अंत दोनों ही इसी बात से हो रही है कि किस तरीके से श्री भगवान को सतत रूप से स्मरण में रखा जाए। जहां पर परीक्षित महाराज जब गंगा के तट पे आके बैठे और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उनको प्रवचन किया, तो परीक्षित महाराज का प्रश्न ही यही था कि जीव के कल्याण के लिए जो सतत स्मरण है वो किस प्रकार से होगा, जो कि उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतस्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चोच्छदा भयम्। श्रोतव्य कीर्तितव्य और स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना और उनका कीर्तन करना, उनके गुणों का कीर्तन करना और उनकी लीलाओं का स्मरण करना, अगर इन तीन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हमारा कार्य जो है वो बहुत सरल हो जाएगा। और यही बात श्रीमद् भागवतम के अंत में कही गई है श्लोक में कि हरेर नाम जो है, भगवान का नाम जो है, वो वास्तविकता में सबसे उत्तम जो है वो उपाय है जिसके कारण जीव का उद्धार हो सकता है। अब देखिए, जड़ भरत महाराज मृग देह में जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद जो उन्होंने जीवन व्यापन किया, जब उनको जड़ भरत का देह प्राप्त हुआ, उनके जीवन से सीखने वाली बात यह है कि अपने आचरण से वो साधक को जो भजन में लगा हुआ है, जो भक्ति में लगा हुआ है, उसको ये सिखा रहे हैं कि जीवन में सावधानी कितनी आवश्यक है। ऐसा इसलिए है, इनके प्रसंग से इसलिए बात बहुत स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि जितना अनुभव इनको है असावधानी होने पर क्या गति होती है, ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भरत महाराज के रूप में भजन कर रहे थे और एक जरा सी असावधानी हुई कि हिरण के एक बच्चे में वो आसक्त हो गए और वहां से पतित होके मृग देह में आए, और मृग देह में इतना कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद फिर जड़ भरत के स्वरूप में आए, तो उस जड़ भरत के स्वरूप में उनको ये बात याद है कि पिछले जीवन में जब मैं मृग देह में था कितना कष्टमय जीवन है पशुओं का, ठीक से खाने को नहीं मिलता है, ठीक से हमेशा व्यक्ति को, पशु को डर बना रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, कितनी प्रकार की समस्याएं जो हैं पशु देह के अंदर हैं, और ये बात वो भलीभांति जानते हैं। तो असावधानी के कारण कैसे व्यक्ति अपने आप को कष्ट में गिरा लेगा, इसका अनुभव जितना जड़ भरत महाराज को है, जन्म तो बहुत सबके हुए हैं, अपने पिछले जन्म तो सबने लिए, परंतु किसी को याद नहीं है ये बात कि कितना कष्ट में रहा है व्यक्ति, परंतु जड़ भरत महाराज को ये बात याद है कि मैं कितने कष्ट में रहा पिछले जीवन के अंदर। हालांकि भक्ति में थे, परंतु मनुष्य देह में जो भजन साधन और जो आनंद प्राप्त हो सकता है उसकी कल्पना और किसी देह के अंदर की नहीं जा सकती, क्योंकि मनुष्य देह ही एकमात्र देह ऐसा है जिसके जिसमें सुविधा है इस प्रकार की, और किसी देह में नहीं है ऐसी। भले ही मृग देह में रहे हो, भक्ति का याद है सब कुछ, परंतु फिर भी बहुत कष्टमय जीवन है, और इससे ज्यादा अनुभव और किसी का ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। तो साधक के जीवन में कितनी सावधानी की आवश्यकता है, इस बात की शिक्षा जड़ भरत महाराज ने प्रदान की है। अपने पूरे जीवन भर साधक ऐसा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना संभल कर चले, साधक का अर्थ ही होता है जो सधा हुआ है, जो साधन में अपने आप को साध के आगे एक एक पग बढ़ाकर चल रहा है उसको साधक कहते हैं, और अपने अंतिम जीवन में इतना सतर्क रहकर चले कि कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो जाए मेरे जीवन में जिससे कि मेरे भक्ति के ऊपर, मेरे साधन के ऊपर, भगवान के स्मरण के बीच में किसी प्रकार का अंतराल आ जाए। अगर ऐसा करने में सक्षम रहेगा, यानी कि आजन्म स्मृति बनी रहे उसकी जब तक वो शरीर ना छोड़ दे, इतना साधक को प्रयास करना चाहिए, ये आवश्यकता है। अन्यथा बीच में अगर अंतराल आ जाएगा तो भक्ति जो है शिथिल हो जाएगी, वो ढक जाएगी, और फिर उस आनंद का, जो भजन का जो आनंद है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। महात्मा गण इसलिए बहुत सतर्क रहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अंतराल ना आए, हमारे भजन के बीच में कोई भी ऐसी वस्तु ना आ जाए जो कि विक्षेप पैदा करे और हमारा भजन से मन हट जाए। श्री विश्वनाथ चक्रतीपाद ने माधुर्य कादंबिनी के अंदर इस बात को बहुत स्पष्ट किया है, बोले जब भजन के अंदर अंतराल आता है ना, उसका कारण होता है कषाय है हृदय के अंदर। कषाय का अर्थ होता है बहुत प्रयास कर रहे हैं भजन करने का, माला जपने का, परंतु मन नहीं लग रहा है, इसको कषाय कहते हैं। ये होता है, हर साधक के जीवन में आता है, परंतु अगर प्रयास करता रहेगा, लगा रहेगा, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें अपने आप हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का इतना प्रभाव है कि भक्ति अग्नि के समान है, अग्नि में आप कुछ भी डालेंगे सब जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए साधुगण बहुत सतर्क रहते हैं कि किसी प्रकार का अंतराल जीवन में आने ना दें और अपना जो भजन है वो तेल धारावत जो है वो चलता रहे। एक बार की बात है, एक महात्मा थे, बहुत साधन भजन करने वाले, किसी गांव में रहते थे, एकांत रहते थे बिल्कुल, किसी बहुत ज़्यादा मिलना नहीं। गांव वाले आते थे उनके पास, प्रणाम किए, उनको आदर सत्कार देते थे। तो गांव वालों ने एक बार बोला महात्मा से कि महाराज आप इतना भजन करते हैं, हम सब अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं, आप कृपा करके कुछ समय हमारे लिए भी निकालिए थोड़ा सा, ताकि हमें भी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिले और हम भी थोड़ा भक्ति में लग सकें। तो उन्होंने गांव वालों की बात मानी और पूरा दिन भजन करते थे, साधन करते थे, और शाम के समय एक घंटा सबके लिए सब आके बैठ सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करते थे और उसके बाद सबसे पूछ लेते थे, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। तो ऐसे ही चलने लगा कुछ समय तक। तो एक बार क्या हुआ, उसी गांव के पास में एक वैश्या रहती थी, उसकी उसके संबंध में था कोई एक, उसकी कुछ जानकारी में कोई लड़की थी, उसको बकरे चराने का बड़ा शौक था। तो वहां से निकली, जब उसने देखा कि आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है, तो उसने भी बाबा से एक प्रश्न पूछ लिया। बोले महात्मा जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोले क्या? बोले आप ये बताइए, आप इतने वृद्ध हो गए हैं, थोड़े वृद्ध हो, बहुत वृद्ध हो गए थे, कि आपकी ये जो दाढ़ी दिख रही है ना सफेद सफेद, आपकी दाढ़ी अच्छी या मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो महात्मा सुने तो प्रश्न को, समझ गए कि ये व्यंग कर रही है। हाँ, महात्मा की भी ऐसी दाढ़ी थी, समझ गए व्यंग कर रही है। तो महात्मा मुस्कुरा गए, कुछ बोले नहीं और अपनी चर्चा को निरंतर जो है जारी रखे। तो वो रोज ऐसे नित्य प्रतिदिन आते जाते देखती थी और बीच बीच में व्यंग करने के लिए फिर से प्रश्न कर देती थी, महात्मा जी आपने बताया नहीं, हमने प्रश्न किया था, आपकी दाढ़ी अच्छी है हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो बहुत समय हो गया, अब महात्मा का अंतिम समय आया, मरणास जब शरीर त्यागने को हुए, जब शैया पे लेटे हुए थे, आंख बंद करके अपना स्मरण कर रहे हैं ठाकुर जी का, और सब लोग कीर्तन कर रहे हैं कि अब महात्मा के जाने का समय हो गया है। तो इतने में ही महात्मा की आंख खुली, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि महात्मा ने आंख तो खोली, चलो। तो सबने पूछा महाराज क्या आज्ञा है आपकी, कुछ सेवा करें आपकी? बोले हाँ, एक हमारी आज्ञा मानोगे? बोले हाँ बताइए। बोले वैश्या की जो लड़की है ना उसको बुला के लाओ। अब जो अपरिपक्व साधक थे, अब बोले लो मरने का समय आया है, इनको वैश्या की लड़की याद आ रही है। अपरिपक्व साधक ऐसे होते हैं। अब महात्मा के हृदय की बात कौन जाने, हृदय में क्या चल रहा है, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं? परंतु फिर भी सबने सोचा कि भाई जो जाने वाला है, जिसका शरीर छूटने वाला है, उसकी अंतिम जो इच्छा है पूरी करनी चाहिए, बुलाओ। अब बुलाया गया, अब वो लड़की आई, तो महात्मा ने उनसे पूछा कि बेटी वो जो प्रश्न किया था ना वो दोबारा प्रश्न कर दो। तो बोले महाराज इस समय तो आप शरीर छोड़ने वाले हैं, इस समय मुझे बुलाया प्रश्न करने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है? बोले करो प्रश्न, अब वो समय आ गया है जब मुझे उत्तर देना है इसका। तो विनम्रता पूर्वक, जैसे पहले अब व्यंग वाली बात नहीं थी, अब थोड़ा विनम्रता से और गंभीरता से प्रश्न किया कि ठीक है आप बताइए अब कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी है, आपकी दाढ़ी अच्छी? तो महात्मा ने इतनी सुंदर बात कही, बोले कि तेरे कामी विषयी पामर और लोलुप बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी करोड़ गुना अच्छी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस दाढ़ी में, जो मेरी दाढ़ी है, इसमें वासना का विषय और भोग का कोई भी दाग नहीं है, कोई भी दाग नहीं है इसके अंदर। भगवान की माया बहुत प्रबल है, तू जानती नहीं है, इतनी प्रबल है कि अच्छे से अच्छे कोटि के साधक को भी उठा के नीचे गिरा देती है। और इस समय में जब तूने प्रश्न किया था, अगर मैं उस समय उत्तर दे देता कुछ प्रकार का, और उसके बाद में अगर मेरी कुछ दुर्दशा हो जाती तो मैं ये उत्तर देने लायक नहीं रहता तुझे। मेरा उज्जवल चरित्र, पूरे जीवन भर जो मैंने भजन किया है, मेरे इस चरित्र के ऊपर एक भी काला धब्बा नहीं है। और आज अपना उज्जवल चरित्र लेकर मैं श्री सीताराम के चरण कमलों में जा रहा हूं। यह है वास्तविकता, इसे कहते हैं सावधानी, कि महात्मा लोग सावधान कितने रहते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव परिवार में भी देखिए, जितना महत्व किसी साधु के देह त्याग का है उतना उसके जन्म दिवस का नहीं है। हाँ, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन। तो जो आचार्य गण जब यहां से जाते हैं, जब इस धराधाम को छोड़कर जब जाते हैं, वास्तविकता में वो इतना महत्वपूर्ण पल होता है ना, क्योंकि पूरे जीवन भर जो उस व्यक्ति ने भजन किया है, हाँ, उसकी साक्षात झलक दिखती है उस व्यक्ति के देह त्याग में, कि हाँ अब ये शरीर छोड़ेगा यहां से और सीधा सरकार के चरण कमलों में जाएगा। ये दिखता है वहां पर, अपीरेंस से नहीं पता लगता, क्योंकि जब कोई जन्म लिया ठीक है, आप उससे नहीं पता लगा पाएंगे कि आगे के जीवन में क्या करेगा, परंतु जो जीवन भर किया है वो तो दिखता है, और उसका उसकी झलक दिखती है उस व्यक्ति की चेतना के ऊपर जो वो अंतिम समय में होता है। प्रभुपाद जी को देख लीजिए आप, इसी श्री वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद क्वार्टर्स के अंदर प्रभुपाद जी जब शैया पे लेटे हुए हैं, चेतना का पता लग रहा है व्यक्ति के कि कहां पर है वो। भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं, श्री कृष्ण का राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं, इतनी ऊंची स्थिति व्यक्ति की। तभी तो ऐसे आचार्यगण जो है हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। किसी ने कोई काम किए हो इस जगत के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हो सकता है जगत उसको भुला दे थोड़े समय के बाद, परंतु भक्त तो अमर हो जाता है हमेशा के लिए, भक्त हमेशा अमर हो जाता है। इन शास्त्रों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है, और ये अमर हो गया पूरी तरीके से। तो ऐसा जब होता है जब साधुगण बहुत सावधानी के साथ चलते हैं अपने जीवन के अंदर और भगवान की स्मृति बना के रखते हैं। ऐसा करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस बात को इंगित भी किया है इस तात्पर्य के अंदर, कि वह ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है, किंतु पुष्ट। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ, किंतु असावधान रहने के कारण उन्हें मृग रूप में जन्म लेना पड़ा। तो किसी भी साधक के लिए आप बस इसको लिख लीजिए इस बात को, असावधानी जहां पर, जहां असावधानी होती है ना, वहां दुर्घटना घट जाती है। और दुर्घटना घटते ही व्यक्ति के चित्त पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसको दोबारा से उसी स्थिति में आने में बहुत समय निकल जाएगा आपका, बहुत समय ऐसा निकल जाएगा। दोबारा मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं आप, किसी प्रकार की असावधानी ऐसी हो गई जो कि करने योग्य नहीं है, शास्त्र युक्त नहीं है, आप कितना ही प्रयास करेंगे ना उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, आपका चित्त वैसा स्थिर नहीं रहेगा जैसे पहले था। क्योंकि आध्यात्मिकता भक्ति बहुत कोमल चीज है, बहुत ही सेंसिटिव है, और सेंसिटिव चीज को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा भी आप उसको ओपन में कर देंगे तो प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सावधानी रखें, और हमेशा इसका जो उपाय बताया गया है सावधानी रखने का उपाय सबसे अच्छा ये बताया गया है कि हमेशा सत्संग में रहें। साधु संग में रहेंगे ना तो निश्चित रूप से आपकी जो सावधानी है वो असावधानी में कन्वर्ट नहीं होगी किसी कैसे भी करके। कितना देखिए, भागवतम के ही चरित्र जो है वो इतना सुंदर प्रमाण दे रहे हैं। षष्ठम स्कंद के अंदर जहां पर वृत्रासुर की कथा है, वृत्रासुर क्या बात कह रहे, इतनी सुंदर बात कही है उन्होंने। पहला श्लोक जो चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, अहम हरेर तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मन स्मरेता सुपरतेर गुणास्ते। मेरे को क्या चाहिए, बोले अहम हरेर तव पादेक मूलम दासानुदासो, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। अभी विचित्र बात बोली, आपका दास नहीं बनना चाहता। हम तो सारे यहीं पर प्रयास ही करते हैं कि हमारे नाम के पीछे भी लिखा हुआ है ये दास ये दास। यहां पर वृत्रासुर बात कह रहे हैं अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो, मैं तो आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। तो दास बनने में कोई खराबी है क्या, बताइए, दास बनने में कोई हानि है क्या? तो क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, विचार करने वाली बात है ना। दास बनने में कोई हानि है? अहंकार आ जाता है। वास्तविकता में दास बनने में हानि है। अब आप बोलोगे ये तो विचित्र बात कह रहे हो आप, हम सब तो यही प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी का दास बनने का। इसका उदाहरण देख लीजिए, वृत्रासुर खुद ही देख रहे हैं इस बात को और खुद ही बता रहे हैं, और दूसरा भी उदाहरण दूंगा। वृत्रासुर जब चित्रकेतु महाराज के रूप में थे, भजन करके शंकरषण भगवान के भक्त बने, उनके दास बने, वो शरीर छूटा तो गंधर्व बने। गंधर्व बन के ऐसा विमान प्राप्त हुआ जो कहीं पर भी ले जा सकते थे उसको। अब शंकरषण जी के दास कहलाने के कारण, उनके भक्त कहलाने के कारण, वो विमान ऐसे घुमाते थे कैलाश पे लेकर गए, और वहां पर उन्होंने एक चीज ऐसा दृश्य देख लिया कि पार्वती जी शिव जी के अंक में बैठी हैं, और शिव जी आध्यात्मिकता का और भक्ति का संदेश जो है साधुओं को दे रहे हैं। अब उनका माथा खनक गया एकदम से, बोले ये तो विचित्र बात, ये तो बड़े गुरु जी आए सामने, आचरण तो इस प्रकार का कर रहे हैं, पत्नी को तो अंक में बिठा रखे हैं और बात भक्ति की कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। अब वहां उनसे हुआ अपराध और पार्वती जी को आया क्रोध, और पार्वती जी ने बोला कि जाओ असुर योनि में गिरो नीचे। तो शंकरषण भगवान का दास बनने के बाद भी क्या बने, क्या बने, असुर बन गए। दूसरा उदाहरण जय और विजय का, ठाकुर जी नारायण के भक्त हैं, उनके दास हैं, और उसके बाद सनक सनातन के प्रति अपराध हुआ तो फिर नीचे गिरे, फिर क्या बने, फिर असुर बने। तो इससे ये निर्णय, ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि दास बन के भी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आप नीचे नहीं गिरोगे, ये कंक्लूजन है इसका। दास बन के भी श्योरिटी नहीं है कि आप वहीं वैसी परिस्थिति में रहोगे, हो सकता है आपको गिरना पड़े, भागवत के ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। परंतु अगर आप दास दासानुदास बन जाते हैं तब ऐसा कोई विकल्प नहीं बचेगा कि आपको दोबारा से नीचे गिरना पड़े। यह है दास दासानुदास की वास्तविकता में महत्वता महिमा। हम तो सोचते हैं ऐसा कि दास बन जाए तो सारा कार्य खत्म, लेकिन जो अच्छे कोटि के महात्मा है ना, जिनका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है, महाराज कुलशेखर की प्रार्थना देख लीजिए आप, क्या बोल रहे हैं, दास दासानुदासानुदासानुदासानुदास, कितना नीचे तक ले गए। क्यों ऐसा इसलिए बताया गया है, बोले आप जितना नीचे रहेंगे ना उतनी आचार्य परंपरा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। जितने भगवान और आपके बीच में जितने आचार्य हैं उन सब की कृपा आपके पास हो जाएगी। अन्यथा आप केस डायरेक्ट भगवान के नीचे हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका पात्र बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। अन्यथा पात्र में अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के अगर छिद्र हैं तो अगर कृपा ठाकुर जी देंगे भी, उनके तो सहस्त्र हाथ हैं, अगर देंगे आप दो हाथ से संभाल कितना लेंगे बताइए। सारा पात्र जो है आपका, जिसमें ये जो छेद है, सारी की सारी कृपा बह जाएगी। परंतु जो समर्थ आचार्य हैं परंपरा के अंदर, हाँ, उनके माध्यम से अगर आप कृपा को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्यों? क्योंकि आचार्य का की आज्ञाओं का पालन करके व्यक्ति समर्थ बनता है, उसके अंदर ये जितने भी विकार हैं ये सारे हट जाते हैं और बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और निर्मल जब होता है, पात्र इतना सुदृढ़ हो जाता है, फिर जब कृपा नीचे उतरती है तब वो उस पात्र के अंदर ठीक से ठहर पाती है, अन्यथा ये कर्म हो नहीं पाएगा। इसलिए जितना नीचे रहेंगे, जितना अपने आप को जमीन से छुआ के रखेंगे, उतना ही बेहतर है। त्रिणादपि सुनिचन महाप्रभु ने ऐसे नहीं बोल दिया, बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। और हर साधु के हृदय में, हर साधु के जीवन में आप देखिए, जो जितना कोटि का उच्च महात्मा होगा, उतनी ही अच्छी कोटि का उसका दैन्य भी होगा। और जहां पर दैन्य है वहां पर अहंकार नहीं होता, और जहां पर अहंकार नहीं होता वहां पर अविद्या भी नहीं होती। और अविद्या समाप्त हुई आपकी, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए इस बात की आवश्यकता है, सत्संग में रहकर हमेशा पकड़ के रखना चाहिए इस बात को कि कैसे करके हम जो है इस दैन्य को, अपने जो भजन के जो स्तर को है, इसको आगे बढ़ाएं, अन्यथा ये कार्य बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत विकट हो जाएगा। और इन काम क्रोध लोभ मोह को यहां से भगाना अपने हृदय के अंदर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता इसलिए भी है क्योंकि इतना आसान नहीं है इनको यहां से निकालना बाहर, क्योंकि संसार के अंदर इतनी जो मोह बुद्धि है ना हमारी, हमें संसार अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए तो संसार हृदय में बसा हुआ है। और संसार हृदय में बसे होने के कारण ये सब कुछ अच्छा लगता है, यहां से निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल। लेकिन सत्संग में जाएंगे, इस प्रकार का विवेक होगा कि ये संसार जो है ये दुखालयम है, इससे बाहर निकलना है, और वास्तविकता में श्री भगवान के चरण कमल ही हमारा जो लक्ष्य है, तब हम सत्संग में जब ठीक से बात सुनेंगे, आध्यात्मिक चीजें सुनेंगे, तब श्री भगवान के प्रति हमारा जो है लोभ बढ़ेगा, और तब इस काम क्रोध लोभ मोह जो झूठे झूठे हैं सारे के सारे, ये सब बाहर निकलेंगे और श्री कृष्ण यहां पर आके बैठेंगे। वास्तविकता में ये हृदय जो है ये भगवान का विश्राम स्थल है, काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य का नहीं है। हमने तो इनको दे रखी है जगह कि आ जाओ बैठ जाओ सारे यहां पर आके, जिसको बिठाना है वो जो उनको जगह नहीं दे रहे हैं, इन सबको दे रखी है जगह। तो नाम स्मरण करें ठीक से तो अपने आप हो जाएगा। इसका उदाहरण देता हूं कि इनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, नाम स्मरण के माध्यम से, गुणों की लीला गान के माध्यम से और स्मरण के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, रात्रि का समय था, एक घर के ना बहुत सभी लोग जो हैं वो किसी उत्सव में गए हुए थे, तो पीछे जो सबसे बुजुर्ग थे वो घर में थे। तो किसी प्रकार से चोरों को ये पता लग गया कि इनके घर में, इनके घर वाले कोई है नहीं यहां पर, हा? तो उन्होंने सोचा कि आज यहां पर जो है चोरी करते हैं जाके। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, थोड़ी सी बहुत आवाज हुई तो वो जो बुजुर्ग थे अंदर, उनको पता लगा, उनको समझ में आया कि अच्छा चोर है बाहर। तो उन्होंने क्या किया, डरे नहीं वो बिल्कुल, उन्होंने क्या किया, एकदम से ना ये बोलना शुरू किया, बहादुर सिंह इधर आओ, वीर सिंह इधर आओ, शमशेर सिंह इधर आओ। उसने ना कम से कम 10-12 नाम गिरा दिए ऐसे। और चोर सोचे यहां तो बहुत सारे लोग हैं अंदर। अब उन्होंने चोरी का जो प्लान है, जो उनका जो विचार था, वो उन्होंने त्याग दिया और वहां से चले गए। अब आप सोचो एक बात कि जब झूठे नाम लेने से, झूठे नाम लिए गए ना, कोई तो प्रस्तुत नहीं था वहां पर, कोई भी नहीं था वहां पर, झूठे नाम लेने से जब सच्चे चोर चले गए, तो श्री भगवान का नाम लेने से ये काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य जो असली चोर है ये नहीं चले जाएंगे। वास्तविकता ये है, वास्तविकता ऐसी, अगर हम ध्यानपूर्वक लेना शुरू करें ना अगर, तो बताइए काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य इनका ज्यादा बल है कि भगवान के नाम का ज्यादा बल है? नाम का ज्यादा बल है ना। तो नाम को हृदय में रखना चाहिए,
नाम को वाणी को वाणी के ऊपर रखना चाहिए, इसको स्मरण में रखना चाहिए। जितना स्मरण आप करते रहेंगे ठीक से, नाम का उच्चारण करते रहेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो ऐसे ही भाग जाएंगे अपने आप, बिल्कुल भाग जाएंगे। पर व्यक्ति लगा रहे जीवन के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में लगा रहे अपने आप, और जब लगा रहेगा तो अपने आप हृदय अनुभूति होगी व्यक्ति की, व्यक्ति के हृदय के अंदर, और जब ऐसा होगा तो अपने आप उसको उसका जीवन जो है इतना शांतिमय, इतना सुखमय और इतना आनंदमय हो जाएगा कि कल्पना भी नहीं कर सकता है व्यक्ति। जो महात्मा ऐसे लगे रहते हैं ना जीवन में, तो उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो अकल्पनीय होती हैं। मैं आपको यहां की बात सुनाता हूं, इसी ब्रज की। यहां पास में ही एक स्थान है, गोपेश्वर महादेव आपने देखे होंगे, वहां की जो गली है ना, वहां पर एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति देखने में बिल्कुल पागल, अभी की घटना है थोड़े समय पहले की, देखने में बिल्कुल पागल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, कभी नहाए धोए नहीं, ऐसे रहते थे। पूरी ठंड पड़ रही है, खूब कोहरा पड़ रहा है, व्यक्ति ने एक कंबल एक चादर डाल रखी है बस अपने ऊपर, इतना उनका सामर्थ्य। तो एक महात्मा कथा कह रहे थे, तो वहां पर जाके वो बैठकर जंगले में से देखने लगे और सुनने लगे। तो महात्मा जब कथा कह रहे थे, उन्होंने नाम का वर्णन किया तो उनको विकार आ गया शरीर के अंदर सुनकर, तो कुछ और भगवान की लीलाओं का वर्णन किया तो अश्रुपात होने लग गया। तो जो महात्मा कथा कह रहे थे उन्होंने देखा उनको और समझे कि पागल तो नहीं है ये, देखा उन्होंने, उन्होंने भी था पहले जब उधर से निकलते थे, पास से उनको देखते थे बैठे हुए, तो वैसे तो पहले लगता था कि पागल है, परंतु जब कथा सुन के ये सब लक्षण देखे तो उनको लगा कि पागल तो नहीं है। तो अच्छा, कथा समाप्त हो गई। तो एक दिन ऐसे ही गोपेश्वर महादेव से जा रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं को देखा, वो जो पागल से थे ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, रात्रि में कम से कम 10-11 बज रहे हैं और ऐसे बैठे हुए एक कंबल डालकर। तो उनका मन हुआ कि देखे तो सही कि अच्छा यही वही महात्मा ऐसे व्यक्ति हैं। उनके पास गए और बहुत प्रणाम किया उनको, बोले महाराज हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। तो पहले उनकी तरफ देखा और बोले पूछे क्या जानना चाहते हैं, बोले आप कहाँ के हैं, कौन से कुल के हैं। तो आप आश्चर्य करोगे, उन्होंने जानते हैं क्या कहा, बोले हमारा कुल जो है पवित्र कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल है, जो ऐसे बैठे हैं कंबल के अंदर फटे पुराने नहाए धोए नहीं है। बोले अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं, बोले हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, और अपने आप से बताए, बोले हम MSc किए हुए हैं, मास्टर्स इन साइंस है, MSc किए हुए हैं, 45-46 वर्ष उनकी आयु होगी। तो उन्होंने पूछा महाराज से, वो जो बैठे हुए थे पागल से, उनसे पूछा, बोले महाराज आपको हमने देखा जब कथा कर रहे थे हम, आपके अंदर इतना विकार हुआ, तो हम आपसे अनुभव जानना चाहते हैं आपका, निश्चित रूप से आप पागल तो नहीं है हम जानते हैं, किसी प्रकार का अनुभव है आपको। हाँ, बोले हाँ बहुत अनुभव है। बोले कैसा अनुभव है? तो उन्होंने पूछा उनसे, ठाकुर जी का दर्शन हुआ है आपको? तो इतना कहते ही रोने लग गए। बोले हुआ नहीं है, नित्य होता रहता है। और बोले कैसे होता रहता है? बोले जैसे आप खड़े सामने हमसे बतिया रहे हैं ना, ऐसे ही आके हमसे बतियाते हैं ठाकुर जी। ये अभी की घटनाएं, 3-4 साल पुरानी बात है, पर उन महात्मा ने एक बात कही, बोले कि हमारा मन किया आपसे बात करने का, इसलिए हमने उजागर कर दिया आपको, परंतु आप ये बात किसी से कहिएगा मत। तो उन महात्मा ने बताया बात, बोले जब उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि बोले ठीक है महाराज, जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक तो हम ये बात किसी से नहीं बताएंगे। तो थोड़े समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया, फिर उन्होंने ये बात बताई कि ऐसे महात्मा जो है ऐसे घूमते थे। ये ब्रज की घटना है, बिल्कुल अभी पीछे की। एक अयोध्या की घटना सुनाए आपको, वहां पर भी एक माता जी रहती थी, शुरुआत से भजन में लगी, बहुत वृद्ध हो गई, तो उनका जो सिद्ध वात्सल्य भाव था राम जी के प्रति, सारी सेवा करती थी अपने हाथ से खुद, और
जब मरणासन्न हुई, देह त्याग करने को हुई, तो उनके एक पुत्र थे, वो भी पास में आ गए, बैठे उनके पास, कीर्तन करने लगे, तो लेटी हुई थी, एकदम से उठ के बैठ गई और ऐसे ऐसे करने लगी। तो उनके पुत्र ने पूछा कि मैया ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारी बहुएं हैं और हमारे जो बेटा है, बहुएं और बेटा मतलब सीताराम लक्ष्मण हनुमान और जो उनकी चार पत्नियां हैं, ये इनके प्रति सिद्ध वात्सल्य, ये सब आ गए हैं सामने, मैंने सोचा कि अब मैं जा रही हूं तो इनको आशीर्वाद दे दूं फिर मैं चले जाऊंगा। इतना वात्सल्य, इतना सिद्ध भाव है। जो व्यक्ति भजन में लगा रहे ना जीवन भर, निश्चित रूप से उसके साथ ऐसी अकल्पनीय घटनाएं हो जाती हैं, और होकर आप सबके साथ भी हुई होंगी निश्चित रूप से। भजन का प्रभाव ही ऐसा है कि भगवान जो है वो आदान प्रदान किए बिना रहते नहीं है। फिर भक्त का जो कोमल चित्त जब हो जाता है तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण जो है पिघल जाते हैं और फिर उसके साथ इस प्रकार के कार्य करते हैं ताकि उसका जो चित्त जो है पूरी तरीके से 100% जो है वो उनके चरण कमलों में लग जाए। तो सावधानी के साथ व्यक्ति सत्संग करे और जीवन भर लगा रहे, इसी बात को ब्रह्मा जी ने भी कहा है दशम स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानैवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुभिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे से दाय भाग। इसकी जो अंतिम पंक्ति है ना, जीवे तयो मुक्ति पदे से दाय भाग, इसका अर्थ ही यही है। जीवे तयो मुक्ति पदे से दाय भाग का अर्थ है कि व्यक्ति अगर भगवान की संपत्ति का अधिकारी बनना चाहता है, जैसे कि एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बनना चाहता है तो उसको पिता की आज्ञा माननी पड़ेगी, थोड़ा बहुत अगर ताड़न हो रहा है तो उसको सहना पड़ेगा और पिता का आदर करना पड़ेगा, तो अपने आप पिता के जाने के बाद वो जो संपत्ति है वो पुत्र के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर भगवान की संपत्ति किसी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, यानी कि भक्ति रूपी संपत्ति अपने जीवन में, अपने हृदय में चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको पूरे जीवन भर अपने इस भक्ति पथ पर लगे रहना पड़ेगा, अर्थात उसको भजन में जिंदा रहना पड़ेगा। अगर भजन छोड़ दिया तो ये जो संपत्ति है भक्ति रूपी उसको प्राप्त नहीं होने वाली है। तो जिंदा रहने का मतलब भजन में लगा रहे कंटिन्यू, कितने भी समस्याएं आ जाएं परंतु छोड़े नहीं, सत्संग में रहे, सत्संग से बल मिलेगा और आप अपना नाम भजन, अपना स्मरण जो है उसको निरंतर जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से अंततो गत्वा आप श्री भगवान के चरण कमल तक पहुंच जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद।